आज है 1 मई दिन बुधवार। सभी सुनने वालों को राजेश जोशी का नमस्कार। पाकिस्तान के चरमपंथी संगठन जैश ए मोहम्मद के मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र ने आतंकवादियों की सूची में शामिल किया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में संदिग्ध माओवादियों ने बारूदी सुरंग से गाड़ी उड़ाई, 16 पुलिस वालों की मौत। सुनेंगे विश्लेषक की राय।
सशस्त्र लड़ाई करने से, लोगों को मारने से कुछ भी नहीं मिलेगा, ना उनको, ना आदिवासियों को, ना दलितों को।
उधर वाराणसी में नरेंद्र मोदी को चुनौती देने वाले तेज बहादुर यादव का नामांकन खारिज।
जो ऑब्जेक्शन आए थे उनकी सुनवाई के बाद सबको समाहित करते हुए जो श्री तेज बहादुर हैं उनका नामांकन निरस्त किया गया।
खबरें होंगी आईपीएल की भी, लेकिन सबसे पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार सिंधुवासिनी से सुनिए। संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तानी चरमपंथी और जैश ए मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर को आतंकवादियों की सूची में शामिल कर लिया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत सैयद अकबरुद्दीन ने ट्वीट करके इसकी पुष्टि की है। भारत का आरोप है कि मसूद अजहर के संगठन जैश ए मोहम्मद ने ही हाल में कश्मीर के पुलवामा में हुए चरमपंथी हमले के पीछे जिम्मेदारी ली थी। इस हमले में भारत के कम से कम 40 सुरक्षा बल मारे गए थे। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में एक माओवादी हमले में सुरक्षा बलों के 16 जवानों और एक ड्राइवर की मौत हो गई है। माओवादियों ने सुरक्षा बलों के एक वाहन को बारूदी सुरंग के जरिए निशाना बनाया। ये जवान महाराष्ट्र पुलिस के C-60 कमांडोज का हिस्सा थे। इससे पहले माओवादियों ने वहां एक निर्माणाधीन सड़क के पास 20 से ज्यादा वाहन भी जला दिए थे। गढ़चिरौली महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा माओवाद प्रभावित जिलों में गिना जाता है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले की निंदा की है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में मजदूर दिवस के मौके पर आयोजित एक प्रदर्शन से पहले धुर वामपंथी चरमपंथियों ने और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई। वाम कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर मोर्टार दागे और जवाब में पुलिस ने उन पर आंसू गैस छोड़ी। सोशल मीडिया पर दंगों की अफवाह फैलने के बाद सुरक्षा के मद्देनजर सैकड़ों पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया। इन सब के बीच अब तक 80 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और कईयों की तलाश जारी है। ये हिंसा उस वक्त हुई जब ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। आज के इस प्रदर्शन का आह्वान द येलोएस्ट मूवमेंट ने किया था। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। वेनेजुएला में विपक्ष के नेता ख्वान ग्वाइदो ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पद से हटाने के लिए एक विशाल प्रदर्शन का आह्वान किया है। ग्वाइदो ने कहा कि मजदूर दिवस के मौके पर आयोजित ये प्रदर्शन ऐतिहासिक होगा। वहीं निकोलस मादुरो पद पर बने रहने के अपने फैसले पर अडिग हैं। उन्होंने सरकारी टीवी चैनल पर राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि दुश्मन देश की सेना को उनके खिलाफ मोड़ने में नाकाम रहे हैं। मादुरो ने अमरीका में डोनाल्ड ट्रंप सरकार पर भी उनके खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया।
Decía Mike Pompeo en la tarde que yo decía Maduro tenía un avión prendido.
Mike Pompeo ने कहा था कि निकोलस मादुरो एक प्लेन से क्यूबा भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रूस ने उन्हें भागने से रोक लिया। जॉन बोल्टन ने वेनेजुएला के सैनिकों और लोगों को तख्तापलट में शामिल होने को कहा, लेकिन उनकी ये योजना भी नाकाम हो गई। भगवान जाने कि अमरीकी सरकार के लोग और कहां तक जाएंगे। ये थे वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अफगानिस्तान की सीमा पर हुए चरमपंथी हमले में 3 पाकिस्तानी जवानों की मौत हो गई है। हमले में 7 जवानों के घायल होने की भी खबर है। अधिकारियों के मुताबिक अफगानिस्तान की तरफ से 60-70 चरमपंथियों ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर उस वक्त हमला कर दिया जब वो उत्तरी वजीरिस्तान जिले में सीमा पर घेराबंदी कर रहे थे। अधिकारियों का कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से भी हमले का जवाब दिया गया और हमले के बावजूद सीमा पर घेराबंदी जारी रहेगी। लंदन की एक अदालत ने विकीलीक्स के फाउंडर जूलियन असांज को जमानत की शर्तें तोड़ने के आरोप में 11 महीने जेल की सजा सुनाई है। फैसला सुनाने वाले जज ने उनके बर्ताव को कानून का गंभीर उल्लंघन बताया है। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिन भर। मैं हूं राजेश जोशी। अब से कुछ ही देर पहले खबर आई है कि पाकिस्तान के चरमपंथी संगठन जैश ए मोहम्मद के मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र ने आतंकवादी घोषित कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के दूत और स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने एक ट्वीट के जरिए इसका ऐलान किया। भारत एक अरसे से मसूद अजहर को उन प्रतिबंधित चरमपंथियों की सूची में डलवाने की कोशिश कर रहा था जिन पर दुनिया भर की नज़र रहती है। संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्य चीन ने कुछ समय पहले इन कोशिशों को तकनीकी कारणों से रोक दिया। हमारे साथी कुलदीप मिश्र इस खबर पर और जानकारी देने के लिए स्टूडियो में सामने बैठे हुए हैं। कुलदीप, आपकी नज़र थी खबर पर।
जी, संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत सैयद अकबरुद्दीन का जब ये ट्वीट आया तब ये खबर की पुष्टि हुई। उन्होंने बहुत छोटा सा ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि इस काम में बड़े छोटे सभी देशों का सहयोग मिला। संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंध सूची में मसूद अजहर को आतंकी घोषित कर दिया गया है, समर्थन के लिए सभी का धन्यवाद। अभी जब हम बात कर रहे हैं तो सोशल मीडिया पर भाजपा नेताओं ने इस संबंध में ट्वीट करने शुरू कर दिए हैं। एक बात और बता दूं कि जब संयुक्त राष्ट्र की ओर से प्रतिबंधित किया जाता है किसी शख्स को आतंकी मानकर तो होता क्या है, उसको संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का कोई भी सदस्य देश अपने यहाँ शरण नहीं दे सकता। साथ ही ऐसे व्यक्ति के आर्थिक लेन देन पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक प्रस्ताव है 1267 जिसके तहत एक प्रतिबंध समिति स्थापित है। उसका ये नियम है कि वैश्विक आतंकवादी घोषित होने के बाद कोई भी व्यक्ति किसी भी देश की यात्रा नहीं कर सकता।
ये मसूद अजहर के बारे में खास तौर पर चीन की ओर से पिछली बार तकनीकी कारणों से रोक लगाई गई थी जिसकी वजह से उसको आतंकवादी सूची में नहीं डाला जा सका।
जी, अभी बहुत विस्तृत जानकारियां नहीं आई हैं कि इस बार जब प्रस्ताव पेश किया गया तो चीन के प्रतिनिधि ने क्या कहा, क्या कहकर समर्थन किया, लेकिन चूंकि अभी प्रस्ताव पास हो गया है तो जाहिर है ये तो साफ ही है कि चीन ने वीटो का इस्तेमाल इस बार नहीं किया और इसे पास हो जाने दिया। ये बात बिल्कुल सही है, जानी हुई बात है कि कम से कम 3 बार चीन जो है समर्थन नहीं दिया है इसको, वीटो लगा करके इस प्रस्ताव को रोक चुका है, जबकि फ्रांस, अमरीका और ब्रिटेन जैसे देश इस प्रस्ताव के पक्ष में थे। हाल ही में भारत ने मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित करने की कोशिशों को बल तब मिला था जब ब्रिटेन के उच्चायुक्त डोमिनिक एस्कॉथ का एक बयान आया था। उन्होंने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकियों की सूची में मसूद अजहर को शामिल किया जाएगा, इसे लेकर वो बहुत आशावादी हैं। अमरीकी विदेश मंत्रालय के उपप्रवक्ता ने भी बयान दिया था कि अगर ये नहीं होता है तो ये साझा हित का मसला है और ये क्षेत्र की शांति के खिलाफ होगा।
अच्छा, हमारे श्रोताओं को थोड़ा याद दिलाइए कि मसूद अजहर आखिर कौन है और भारत के लिए क्यों इतने वो महत्वपूर्ण।
जी, भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए महत्वपूर्ण ही है क्योंकि अभी आपको याद होगा पाकिस्तानी विदेश मंत्री का बयान आया था, उन्होंने स्वीकार किया था कि मसूद अजहर बीमार हैं और वो पाकिस्तान में ही रहते हैं। मसूद अजहर के चरमपंथी समूह को भारत कई हमलों के लिए जिम्मेदार मानता है। जैश ए मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर का नाम सबसे पहले चर्चा में आया था साल 1999 में, कंधार विमान अपहरण ये मामला था। आपको याद होगा 160 लोगों की जान बचाने के लिए भारत को मसूद अजहर समेत 3 चरमपंथियों को रिहा करना पड़ा था। इसके बाद मसूद अजहर ने अफगानिस्तान में तालिबान की मदद से जैश ए मोहम्मद नाम का ये संगठन बनाया था और इस संगठन को भारत कई तरह के हमलों के लिए दोषी मानता है जिसमें पुलवामा हमला भी है और संसद हमला भी है।
कुलदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब ये देखना है कि पाकिस्तान में मसूद अजहर के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है या नहीं। फिलहाल लौटते हैं भारत की ओर। महाराष्ट्र राज्य में संदिग्ध माओवादियों के हमले में पुलिस के 15 जवान मारे गए हैं और एक ड्राइवर की भी मौत हुई है। कुल मिलाकर 16 लोग मारे गए हैं। गढ़चिरौली इलाके में बारूदी सुरंग में विस्फोट करके पुलिस के जवानों को ले जा रही गाड़ी के परखचे उड़ा दिए गए थे। गढ़चिरौली महाराष्ट्र में छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा आदिवासी इलाका है जहां पिछले कई दशकों से नक्सलवादी आंदोलन की गहरी जड़ें जमी हुई हैं। नागपुर से संजय रमाकांत तिवारी की रिपोर्ट।
बुधवार को गढ़चिरौली के कुरखेड़ा कोरची रास्ते पर जम्बूरखेड़ा के करीब हुए लैंडमाइन विस्फोट में पुलिस की क्विक रिस्पांस टीम के 15 जवान मारे गए। ये लोग एक निजी वाहन में सवार थे। इस घटना के बाद महाराष्ट्र पुलिस के DGP सुबोध जायसवाल ने मुंबई में पत्रकारों को इस घटना के बारे में और जानकारी दी।
आज दोपहर 12:30 बजे के दरमियान गढ़चिरौली पुलिस की एक क्विक रिएक्शन टीम जो कुरखेड़ा पुलिस स्टेशन में बेस्ड है वो हमारे नॉर्थ गढ़चिरौली में पुराड़ा पुलिस स्टेशन की तरफ रवाना की गई थी और रास्ते में नक्सलियों ने एक लैंडमाइन ब्लास्ट करके हमला किया उन पर और हमारे 15 साथी इस हमले में शहीद हो गए। साथ ही साथ एक प्राइवेट इंडिविजुअल भी जो वाहन चालक थे उनकी भी मौत हो गई।
हाल ही में नक्सलियों ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की अपील की थी, इसके बावजूद गढ़चिरौली में भारी संख्या में मतदान हुआ। पुलिस के मुताबिक बुधवार की घटना द्वारा नक्सलियों ने अपनी शक्ति दोबारा जताने की कोशिश की है। कुछ अरसे से कुरखेड़ा में नेशनल हाईवे का निर्माण कार्य जारी था, जहां बीती रात नक्सलियों ने हमला किया और 27 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। इस घटना के बाद वहां जा रही पुलिस टीम को रास्ते में बारूदी सुरंग से उड़ा दिया गया। पिछले 4 दशकों से महाराष्ट्र का गढ़चिरौली इलाका नक्सली समस्या से जूझ रहा है। अक्सर नक्सलियों और पुलिस की कार्रवाइयों में आम आदिवासी को हिंसा का सामना करना पड़ता है। एक सोच माओवाद को कानून व्यवस्था की समस्या मानता है, तो दूसरी ओर कुछ विश्लेषक इसकी जड़ें सामाजिक विषमता में तलाशते हैं। समाजशास्त्री चंद्रकांत वानखेड़े कहते हैं,
मैं मानता हूं कि इस समस्या को हल करने के लिए एक सोच की भी जरूरत है। ये समस्या सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है ऐसा मान के जो चलते हैं। इकोनॉमिकल पॉलिटिकल सोशल जो सवाल सब क्योंकि दुर्भाग्य से इसमें इन गरीबों को न्याय मिलता नहीं है, ये वजह बता के नक्सलाइट तैयार हो जाते हैं और उनकी सहानुभूति भी इनके प्रति हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सरकार है इस समस्या को लेके टोटलिटी में सोच विचार नहीं रखती है, इसलिए भी इस समस्या का उग्र रूप धारण किया है।
आज के हमले को लेकर कई सवाल अब भी अनुत्तरित हैं, जैसे ये कि पुलिस इस एम्बुश के बारे में पहले से सतर्क क्यों नहीं थी। पुलिस का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP ऑन ड्यूटी टीम को निजी वाहन से सफर करने की इजाजत नहीं देता, फिर यहाँ ये चूक कैसे हो गई। संजय रमाकांत तिवारी, नागपुर।
गढ़चिरौली महाराष्ट्र का वही इलाका है जहां अप्रैल 2018 को सुरक्षा बलों ने एक कथित मुठभेड़ में लगभग 40 लोगों को मार डाला था। पुलिस का कहना था कि ये सभी प्रतिबंधित माओवादी पार्टी के सदस्य थे, लेकिन इस मुठभेड़ पर गंभीर सवाल उठे थे और आरोप ये भी लगाया गया था कि कई निर्दोष ग्रामीण मारे गए हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नंदिनी सुंदर ने मध्य भारत के माओवादी आंदोलन पर द बर्निंग फॉरेस्ट किताब लिखी है। मैंने उनसे सवाल किया कि इस इलाके में नक्सली आंदोलन आखिर इतने बरसों से नियंत्रण में क्यों नहीं आ पा रहा है।
ये इसीलिए कामयाब नहीं हो पाती क्योंकि वो सही ढंग से सारे रणनीतियाँ नहीं अपनाती, सिर्फ सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर फोर्स पर ही उनका जोर रहा है। अभी तक उन्होंने सलवजरूम के लिए कोई ना अपॉलोजी की है ना रिपरेशन किया है, और सब लोग मानते हैं कि वो सबसे बड़ा कारण था जिसके कारण लोग माओइस्ट के साथ जुड़ गए। इतने सालों से ये समस्या चलती रही और मुझे नहीं लगता कि जब सरकारें टॉक्स की बात करते हैं उन्होंने कभी इसको सीरियसली ट्राई किया है।
लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि क्या खुद माओवादी पार्टी एक अंधेरी सुरंग में नहीं फंस गई है? जो जंगलों में हैं वो क्या अजीब से एक दुष्चक्र में नहीं फंस गए हैं? वहां से बाहर भी नहीं निकलना चाहते हैं, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में भी नहीं आना चाहते हैं।
आपने बिल्कुल सही कहा, माओइस्ट पार्टी का कोई विजन नहीं दिखता है। जंगल में वो कितने साल लड़ते रहेंगे और उससे क्या नतीजा आएगा उनको खुद सोचना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये बहुत पिछड़ा हुआ सोच है क्योंकि इस देश में ओपन मास पॉलिटिक्स की जरूरत है, लेफ्टिस्ट सोच की बहुत ज़रूरत है, जल जंगल जमीन को बचाने की बहुत ज़रूरत है, पर इस तरह सशस्त्र लड़ाई करने से लोगों को मारने से कुछ भी नहीं मिलेगा, ना उनको ना आदिवासियों को ना दलितों को। लोकल लेवल पर उन्होंने लोगों के लिए काफ़ी कुछ हासिल किया है, कुछ कुछ ज़मीनें को बचा के रखे हैं, कई कई जगहों में वेजेस बढ़ गए हैं, लोगों को तेंदूपत्ता का सही दाम मिला है, पर ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट होते हुए भी जो ओवरऑल पर्सपेक्टिव उनकी थोड़ी कम है और उनको सोचना चाहिए कि इसको बदलने की ज़रूरत है।
हाल के कुछ वर्षों में देखा गया है कि सरकारों की तरफ से ये बात आई है कि जंगलों में जो लोग रह रहे हैं वो तो हैं, लेकिन उनके समर्थक अर्बन नक्सल्स जिनको कहते हैं, सरकारें कहती हैं, सुरक्षा बल कहते हैं, उनकी तरफ भी निगाह है सरकार की।
अर्बन नक्सल का जो एट्रिब्यूशन लगाया, जो चार्ज लगाया गया है, ये पूरी तरह से एक पॉलिटिकल साजिश है और ये पूरी तरह से मोदी सरकार को चुनाव जिताने के लिए कही गई है। ऐसा कुछ नहीं है, अर्बन नक्सल का कोई ऐसा फिनोमेना नहीं है जैसे वो बात करते हैं। वो खुद ही सोचे कि ये अर्बन टेररिस्ट, प्रज्ञा ठाकुर जैसे अर्बन टेररिस्ट को क्यों नहीं बोलते कि चुनाव लड़ने के बजाय वो जेल में जाकर सारे चार्जेस को फेस करे। इनोसेंट लोगों को अर्बन नेक्सल के नाम से अंदर रखा गया है और मेरा सोच है कि जो भी आज की स्थिति में जल जंगल जमीन का बात करता है तो उसको अर्बन नक्सल बुलाया जाता है। तो ये बिल्कुल कि उनका जिम्मेदारी होता है अर्बन नक्सल का रूरल नक्सल को बोलने का, मुझे इस बात से बिल्कुल सहमति नहीं है।
ये थी प्रोफेसर नंदिनी सुंदर। वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को चुनौती देने वाले तेज बहादुर यादव का नामांकन चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है। तेज बहादुर यादव बीएसएफ के वही जवान हैं जिन्होंने सीमा पर तैनात सैनिकों को दिए जाने वाले खराब क्वालिटी वाले भोजन का वीडियो सोशल मीडिया पर डाला था, जिसके बाद उन्हें बीएसएफ से निकाल दिया गया था। अब तेज बहादुर यादव वाराणसी में नरेंद्र मोदी को चुनौती नहीं दे पाएंगे। हरिता कांडपाल की रिपोर्ट।
बीएसएफ के पूर्व जवान तेज बहादुर ने दो नामांकन पत्र भरे थे, एक 24 अप्रैल को बतौर निर्दलीय उम्मीदवार और दूसरा 29 अप्रैल को सपा बसपा गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में। उन्होंने कहा है कि उनका नामांकन गलत तरीके से रद्द किया गया है।
अब ये अपने वायदे से मुकर गए। इन्होंने अभी हमें से कहा है कि आपने फॉर्म भरते समय चुनाव आयोग का क्लियरेंस क्यों नहीं लगाया, तो ये बार बार एफिडेविट, ये अपने बयान बदलना, नोटिस को बदलना, और आप भी देख रहे हो कि अभी इन्होंने हमें इस समय इसका जवाब दिया है ताकि जो है हम कहीं जा नहीं सकते, जानबूझ के हमें लेट करके जवाब कर दिया। हमें 11 बजे इसका जवाब देते तो हम कोर्ट में उसी टाइम चैलेंज भी कर सकते थे आज इनको।
इस सीट पर भाजपा के नरेंद्र मोदी, कांग्रेस के अजय राय और समाजवादी पार्टी की एक और उम्मीदवार शालिनी यादव ने भी अपने पर्चे भरे हैं। तेज बहादुर यादव ने पहले निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चा दाखिल किया था, फिर समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह मिलने के बाद उन्होंने पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर दोबारा पर्चा भरा था। दो साल पहले बीएसएफ जवान तेज बहादुर यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इस वीडियो में तेज बहादुर फौजियों को मिलने वाले खाने की शिकायत कर रहे थे। तेज बहादुर ने बताया कि अफसरों से शिकायत करने पर भी कोई सुनने वाला नहीं है। तेज बहादुर के उस वीडियो के बाद बीएसएफ समेत राजनीतिक गलियारों में कुछ दिनों तक हलचल मच गई थी। बीएसएफ ने इस मामले की जांच के आदेश दिए थे और बाद में तेज बहादुर को बीएसएफ से निकाल दिया गया था। चुनाव आयोग के एक अधिकारी का कहना है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में प्रावधान है कि हर वो केंद्र या राज्य सरकार का कर्मचारी जिसकी सेवा किसी भी आरोप में बर्खास्त की गई हो वो 5 सालों तक चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो आखिर तेज बहादुर यादव का नामांकन क्यों रद्द कर दिया गया? जिला निर्वाचन अधिकारी और वाराणसी के रिटर्निंग ऑफिसर सुरेंद्र सिंह कहते हैं,
जो भी सरकारी आदमी अगर कोई डिसमिस होता है तो वो डिसमिसल करप्शन और डिसलॉयल्टी टू द स्टेट की वजह से नहीं है या है, इन दोनों ही केसेस में एक सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन से आता है। हमने मौका भी दिया कल आज 11 बजे तक का डेफर करके, लेकिन 11 बजे तक कोई इस तरीके का सर्टिफिकेट नहीं आया और उसी के अभाव में जो डिसक्वालिफिकेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में निर्धारित है उस डिसक्वालिफिकेशन के आधार पर और जो प्रोविजंस हैं उनके आधार पर एक लॉन्ग स्पीकिंग ऑर्डर, पूरा सुनवाई के बाद जो ऑब्जेक्शन आए थे उनकी सुनवाई के बाद सबको समाहित करते हुए जो श्री तेज बहादुर हैं उनका नामांकन निरस्त किया गया।
ये थे वाराणसी के रिटर्निंग ऑफिसर सुरेंद्र सिंह। तेज बहादुर यादव ने वाराणसी में अपना चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया था, जहां बांटे गए पोस्टरों में लिखा गया था कि देश के असली चौकीदार वो हैं। तेज बहादुर यादव का नामांकन रद्द होने के बाद समाजवादी पार्टी का अगला कदम क्या होगा? पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रवक्ता मनोज राय धूपचंडी कहते हैं,
तो इस पर हम लोग जल्दी बैठ कर निर्णय लेकर फैसला लेंगे और मोदी जी को बनारस से जीतने नहीं देंगे।
वाराणसी लोकसभा की सीट से कुल 101 नामांकन दाखिल किए गए हैं, जिनमें से 71 नामांकन पत्रों को खारिज कर दिया गया है।
ये थी हरिता कांडपाल की रिपोर्ट और आइए सुनते हैं बनारस के आम वोटर इस फैसले पर कैसी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं।
सर, जो भी हुआ है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। बहुत से लोग आजकल सोशल मीडिया पे उल जलूल वक्तव्य दे रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि तेज बहादुर यादव को कितना गोल्ड मेडल और सब चीज़ें मिला हुआ है और यहाँ पे एक छत्र राज चल रहा है और दबंगई पूर्ण राज चल रहा है भाजपा का।
जी, मैं उमेश सिंह, जी, ये सपा की भी थोड़ी सी जल्दीबाजी कही जाए या अभी एक गट दे के किसी का टिकट काट के दो दिन पहले इनको टिकट दे के नामांकन कराना, इनको बहुत कम टाइम मिला इसको अपना दिखाने के लिए, सारे डॉक्यूमेंट पूरे करने के लिए, उसकी वजह से भी होना, क्योंकि नामांकन क्लोज होने के बाद ही डिक्लेरेशन का समय दिया जाता, उससे पहले किसी को नहीं बताया जा सकता कि क्या त्रुटि थी क्या था। अभी इनको जब पता चला इन्होंने अपनी पूरी डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं कर पाए, उसकी वजह से ऐसा होना पड़ा, क्योंकि निर्वाचन आयोग किसी के अधीन नहीं होता है। इस स्थिति में निर्वाचन आयोग पे उंगली उठाना निराधार है, वो भी चुनाव से पहले।
राजेंद्र कुमार गुप्ता मेरा नाम है, उनके साथ एक राजनीतिक साजिश का शिकार हुए हूँ, और राजनीतिक साजिश के साथ वो कल जो नए नए कोई परीक्षक आए हैं उन्होंने आते ही उन्हें नोटिस पकड़ दिया, और आज डिक्लेयर कर दिया है कि उनका पर्चा निरस्त कर दिया गया है।
बनारस के कुछ आम लोगों की राय। इस कार्यक्रम में हम कई बार चुनाव की सब खबरें कवर नहीं कर पाते हैं, उन पर नज़र रहती है हमारी सहयोगी दिव्या आर्य की, जो इस समय मेरे साथ बैठी हुई है। दिव्या, जो हम नहीं ले पाए उसके बारे में बताइए।
बिल्कुल, चुनाव से थोड़ा सा हटके पहले बताना चाहूंगी कि शिवसेना के मुखपत्र सामना में आज छपे संपादकीय में बुरके पर पाबंदी की बात ने विवाद छेड़ दिया। संपादकीय में लिखा है, चेहरा ढकने वाले लोग राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकते हैं। यही वजह है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेना ने साहस और धैर्य का प्रदर्शन किया है। जो रावण की लंका में हुआ वो राम की अयोध्या में कब होगा? मैत्रीपाल सिरिसेना के इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं और व्यापक राष्ट्रहित को देखते हुए नकाब और बुरखा पर बैन लगाने की मांग करते हैं। आप जानते ही हैं नरेंद्र मोदी जी आज अयोध्या में थे, हालांकि बीजेपी ने इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। प्रतिक्रिया दी AIIMIM पार्टी के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने।
हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट है, आप जींस पहने, आप बुरखा पहने, नकाब पहने, घूंघट पहने, आप कुछ ना पहने, हिंदुस्तान का संविधान, हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स वो लॉ है जो शिवसेना पोपट नहीं समझ सकती है।
उधर उत्तर प्रदेश में चुनावी खबरों की तरफ रुख करें तो बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के बीच तनातनी रैलियों में दिए जा रहे भाषणों में अब जाहिर होती दिख रही है। अपने एक उम्मीदवार के कांग्रेस में शामिल होने से खफा मायावती ने आज कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा और एक पुरानी बात का जिक्र किया, जिसमें B.R. अम्बेडकर को मुंबई से जीतने नहीं दिया गया था पहले लोकसभा चुनाव में। वहीं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में रैली कर रहे राहुल गांधी ने भी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का रिमोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में होने की बात कही।
नरेंद्र मोदी मुझ पे दबाव नहीं डाल सकता है, मगर नरेंद्र मोदी जी BSP और SP पर दबाव डाल सकते हैं, उनकी हिस्ट्री है, मेरी कोई हिस्ट्री नहीं है।
तो दिव्या, आपने बहुत सारी आवाज़ें सुनाई हैं, बहुत सारी चीज़ें कवर कर दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब वक्त है एक अंतर्राष्ट्रीय विषय का, और वेनेजुएला में चल रही राजनीतिक अस्थिरता पर एक नज़र डालते हैं। लातिनी अमेरिकी देश वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने टेलीविज़न पर प्रसारित एक संदेश में कहा है कि उनका विरोध कर रहे नेता हुआन ग्वाइदो फौज को सरकार के खिलाफ भड़काने में पूरी तरह फेल हो चुके हैं। जब वो राष्ट्र के नाम संदेश प्रसारित कर रहे थे तो उनके साथ वेनेजुएला की फौज के आला अफसर भी मौजूद थे। BBC संवाददाताओं की रिपोर्ट सुनिए कमलेश मठेनी से।
वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने दावा किया है कि उन्होंने विपक्षी नेता खुआन गोइदो की सैन्य तख्ता पलट की कोशिश को नाकाम कर दिया है। मंगलवार को गोइदो के साथ दर्जनों जवान आ गए थे, जिसके बाद हुए संघर्ष में 100 लोग घायल हुए थे। टीवी पर दिए अपने संबोधन में राष्ट्रपति मादुरो ने कहा है कि गोइदो उनके खिलाफ सेना को खड़ा करने में असफल रहे हैं। संबोधन के दौरान मादुरो के साथ कई सैन्य कमांडर भी थे। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी गंभीर अपराधों के आरोपी हैं और वे बिना सजा के नहीं बच पाएंगे। मैंने अटॉर्नी जनरल से बात की है और उन्होंने 3 विशेष राष्ट्रीय अधिवक्ताओं को मनोनीत किया है, जो इस घटना में शामिल लोगों से पूछताछ करेंगे और जांच के आदेश देंगे। सेना और पुलिस के जवानों को चोट पहुंचाने वालों और संविधान, शांति और कानून के खिलाफ अपराध करने वालों को कोर्ट में लाया जाएगा और आपराधिक मुकदमा चलाया जाएगा। ये थे राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के शब्द। विपक्षी नेता गोइदो ने जनवरी में खुद को अंतरिम राष्ट्रपति घोषित किया था और उनको अमरीका, ब्रिटेन और कई लातिन अमरीकी देशों ने मान्यता दी थी। हालांकि मादुरो को रूस और चीन जैसे देशों का समर्थन हासिल है। अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा था कि मादुरो देश छोड़कर भाग रहे हैं। उनके इस दावे को मादुरो ने खारिज किया है और कहा है, माइक पोम्पियो कह रहे थे कि मादुरो विमान से क्यूबा गए थे और रूसियों ने उन्हें वहां विमान से उतारकर देश छोड़ने से मना किया। पोम्पियो के पास सच्चाई की कमी है। अमरीकी सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने आदेश दिया था कि सैनिकों और लोगों को वेनेजुएला में तख्ता पलट करने में शामिल होना चाहिए। वेनेजुएला में इस झड़प को नाकाम कर दिया गया है। ये थे राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के शब्द। मंगलवार को गोइदो 3 मिनट के एक वीडियो में सैन्य वर्दी पहने लोगों के साथ नजर आए थे। उन्होंने घोषणा की थी कि राजधानी कराकस में बहादुर सैनिकों का समर्थन उन्हें हासिल है। हालांकि गोइदो ने अपने समर्थकों से अपील की है कि वे बुधवार को सड़कों पर आएं। मैं सुरक्षा बलों से अपील करता हूं कि वे हमारे लोगों, हमारे परिवारों के सम्मान को बचाने के लिए अपना ऑपरेशन फ्रीडम जारी रखें। यह एक चुनौती है, इसलिए 1 मई को हम सड़कों पर आएंगे। पूरे वेनेजुएला में हम सड़कों पर रहेंगे। ये थे विपक्ष के नेता खुआन गोइदो के शब्द। राजधानी कराकस में मंगलवार को हुए प्रदर्शन वेनेजुएला के राजनीतिक संकट के सबसे हिंसक प्रदर्शन थे। वेनेजुएला के स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि हिंसा में 69 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 2 लोगों को गोली लगी है। अमरीकी विमानन प्रशासन ने आपातकालीन कदम उठाते हुए अमरीकी हवाई जहाजों को वेनेजुएला की हवाई सीमा में 26,000 फुट से नीचे उड़ान भरने पर रोक लगा दी है।
रिपोर्ट सुना रही थी कमलेश मठेनी। दिनभर कार्यक्रम आप BBC हिंदी सेवा से सुन रहे हैं और अब वक्त है खेल समाचारों का। और जैसा कि आपको अंदाजा है, खेल समाचार सुनाने के लिए आदेश कुमार गुप्त हमेशा हमारे साथ रहते हैं, इस समय भी मेरे सामने बैठे हुए हैं। आदेश जी, चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी वापस आ गए हैं, लेकिन वो आराम भी तो कर सकते थे।
जी हाँ,
बुखार था उनको आखिर।
जी हाँ, अब पिछले मैच में बुखार था, आज दिल्ली कैपिटल से मुकाबला है। दरअसल इस बार ऐसा हुआ कि 2 बार धोनी नहीं खेले तो दोनों ही बार उनकी टीम को हार का सामना करना पड़ा। और जाहिर सी बात है कि ये पहली ऐसी टीम थी जिसने सुपर फोर यानी प्लेऑफ में जगह बनाई थी, और धोनी का टीम पर इतना ज़्यादा असर है कि पिछले मुकाबले में जब वो नहीं थे तो उनकी टीम सुरेश रैना की कप्तानी में अपने ही घर में सबसे कम स्कोर पर ऑल आउट हो गई, पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल सकी। तो ये एक मनोबल बढ़ाने वाली बात भी है कि धोनी जब टीम में आते हैं तो उनके साथियों का हौसला बढ़ता है। और सबसे बड़ी बात कि इस IPL में यही देखा गया कि धोनी ने ही अपने दम पर काफ़ी मैचेस को जिताया। आज उनका सामना दिल्ली कैपिटल से है, इसके बाद धोनी की टीम को केवल 1 मुकाबला और खेलना है। और ये इत्तेफाक की बात है कि दोनों ही टीमों के 12-12 मैचों के बाद 16-16 अंक हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो टीम टॉप पर रहते हुए प्लेऑफ में पहुंचेगी उसे 2 मुकाबले खेलने को मिलेंगे फाइनल से पहले, और जो टीम दूसरे नंबर पर रहेगी यानी तो उसे थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और एक जो टॉप पर टीम जाती है उसके सामने थोड़ा कमज़ोर टीम आती है प्लेऑफ में, तो इसका फ़ायदा लेने के लिए भी धोनी आज मैदान में उतरे हैं।
उनकी
पूरी कोशिश होगी कि दिल्ली के खिलाफ वो मैच जिताएं। उधर न्यूजीलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज दूसरी वरीयता हासिल भारत की साइना नेहवाल। पहले दौर में चीन की अनजान सी खिलाड़ी वांग जी से 21-16, 21-23, 21-4 से हारकर बाहर हो गई। 19 साल की वांग जी दुनिया में 212वें नंबर के खिलाड़ी है। राजेश जी, ये एक क्रिकेट की दुनिया में अगर ये कहा जाए कि जैसे महेंद्र सिंह धोनी के सामने अगर कोई नया गेंदबाज हो 18 साल का और वो पहला ही ओवर कर रहा
हो आउट कर दे,
तो ये एक ऐसी स्थिति साइना नेहवाल के साथ थी। उनके अलावा भारत की ही अनुरा प्रभु देसाई भी 6ठी वरीयता हासिल चीन की ली झुई रुई से 21-9, 21-10 से हारकर बाहर हो गई। पुरुष एकल वर्ग में भारत के लक्ष्य सेन भी हारकर बाहर हो गए, लेकिन BSAI प्रणीत जीतने में कामयाब रहे।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदेश कुमार गुप्त। और चलते चलते एक नजर सुर्खियों पर।
BBC समाचार। संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तानी चरमपंथी और जैश ए मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत सैयद अकबरुद्दीन ने ट्वीट करके इसकी पुष्टि की है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में एक माओवादी हमले में सुरक्षा बलों के 15 जवानों समेत एक ड्राइवर की मौत हो गई है। माओवादियों ने सुरक्षा बलों के एक वाहन को बारूदी सुरंग के जरिए निशाना बनाया। फ्रांस की राजधानी पेरिस में मजदूर दिवस के मौके पर आयोजित एक प्रदर्शन से पहले धुरवामपंथी चरमपंथियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई। वेनेजुएला में विपक्ष के नेता खुआन गुआइदो ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पद से हटाने के लिए एक विशाल प्रदर्शन का आह्वान किया। वहीं निकोलस मादुरो पद पर बने रहने के अपने फैसले पर अडिग हैं। BBC समाचार।
तो मुख्य समाचारों के साथ ही हमारा ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आज स्टूडियो मैनेजर थे दीपक जसरोटिया। मैं राजेश जोशी अपने सभी साथियों की ओर से आपसे अनुमति चाहता हूँ। कल सुबह मुलाकात होगी नमस्कार भारत में 6:30 बजे। तब तक के लिए शुक्रिया, शुभरात्रि।